चित्र का नहीं, के साथ मैं अपने स्थान ग्रहण करता हूं।
स्त्रियों को शाल श्रीफल इत्यादि भेंट किया है, मैं सबकी ओर से आभार मानता हूं। और ये शाल श्रीफल तो प्रतीक होता है सम्मान का, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इसकी उपयोगिता से उतना संबंध नहीं होता, अन्यथा गर्मी में शाल नहीं दिया जाता। फिर मुझसे पूछेगी तो क्या मच्छरदानी दें आपको, इसलिए फिर लगता है कि शाल ही ठीक है। मैं अब भोपाल से पधारे डॉक्टर नरेंद्र से आग्रह कर रहा हूं कि वे पधारें और अपना रचना पाठ करें, अपनी कविताओं से हम सब को कृतार्थ करें। भाई डॉक्टर नरेंद्र, जहां जहां आप कृतार्थ करना है।
एक महाकवि के चरणों में एक अदना सा कवि कविता पाठ कर रहा है। करता है क्या जो कुछ सीखा है अपने जीवन में काव्य धारा में, तो पूज्य श्री क्षमा सागर महाराज जी के प्रभाव से ही सीखा है। बहुत कुछ उनकी भक्ति में कहना रहता है मित्रों, पर जितना कहना है उतना हम कह नहीं पाते शब्दों के माध्यम से। कभी कभी सोचते हैं कि जो दिन रात हमें कुछ दे रहा है, हमारी समाज को कुछ दे रहा है, हमारी पीढ़ियों को कुछ दे रहा है, हम उनको क्या दे रहे हैं, उनके सम्मानों में हम क्या कह रहे हैं। तब लगता है कि हम यदि लिखते हैं तो उनके सम्मानों में ही लिखें, हम यदि गाएं तो उनके सम्मानों में ही गाएं, और हम यदि सोचें तो सिर्फ उनके विषय में सोचें, जो हमारी ही नहीं हम सब की, समग्र समाज की, समग्र देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए भी चिंतित है। हम मुट्ठी भर अन्न उनको देते हैं पर कितना सारा उनसे ले लेते हैं, सागरों के बराबर वो हमको दे देते हैं। एक ऐसे ही कविता गुरु महाराज के चरणों में निवेदित कर रहा हूं। उनके चरणों में आकर ऐसा ही लगता है कि बस उनके ही गीत गाऊं, बाकी और कुछ नहीं। एक रचना है कि मन मन पूजा भी करता है मेरी कविता लिखने को, मन मन दिन जब भी करता है मेरी कविता लिखने को, मन कहता है अब क्या लिखना, बहुत लिखा गया लिखने को, लिखना ही है उन पर लिख तू जिन पर लिखना अंतहीन है, जो ईश्वर के सच्चे बंदे इस दुनिया के बंद नहीं है। अरे साबित है जिनसे मानवता, साबित है जिनसे मानवता, उन पर लिखना सार्थक होगा और जितना जी चाहे लिख डाले, सूरज को दीख दिखाना होगा। जिनके सम्मानों में लिखना सरस्वती का बंधन है, जिनके सम्मानों में लिखना सरस्वती का बंधन है, जिनके सम्मानों में लिखना ईश्वर का अभिनंदन है, अरे स्वयं लेखनी आनंदित हो, अक्षर शब्द सुनहरे हो, और जिनके सम्मानों में लिखना जीवन का मंगलमय हो। अरे मुझ में इतना ज्ञान कहां जो मुनि राजों पे लिख पाऊं, मुझ में इतना ज्ञान कहां जो मुनि राजों पे लिख पाऊं, मेरी ये औकात कहां सूरज को दीप दिखा पाऊं, अरे मेरी भक्ति के भगवान है, मेरी श्रद्धा के ईश्वर है, मैं इनके गीत सुनाता हूं और वैभवशाली इस समाज से एक निवेदन करता हूं कि जब भी संत नगर में आए, जब भी संत नगर में आए, इतना तुम सम्मान करो कि ठाट भाट से हो अगवानी, इतनी जय जयकार करो कि डोल उठे धरती का आसन और आसमान थर्रा जाए, कि डोल उठे धरती का आसन और आसमान थर्रा जाए, और चाहे दिशाएं गूंज उठे, सूरज तक शर्मा जाए और बच्चा बच्चा इस बस्ती का संतों का दीवाना हो, बच्चा बच्चा इस बस्ती का संतों का दीवाना हो और जब भी आए संत नगर में उत्सव अजम निराला हो। कि संत नगर में जब आते हैं करुणा की गंगा लाते हैं जीवन के अनमोल खजाने संग साथ में वो लाते हैं, कितना भी हो पतित आदमी उसको गले लगाते हैं, जो समाज में दुत्कारे हैं उनको प्यार जताते हैं, जिनकी जहरीली सांसें हैं अमृत उन्हें पिलाते हैं, आदर्शों से भटक गए जो सच्ची राय दिखाते हैं, अरे जिनका जीवन कंकड़ पत्थर सोना उन्हें बनाते हैं, जिनका जीवन कंकड़ पत्थर सोना उन्हें बनाते हैं और यदि जंग लगा यदि जीवन है उनको बारस बन जाते हैं। संतों के सम्मानों में न कोई कमी आने पावे, संतों के सम्मानों में न कोई कमी आने पावे और ईश्वर के जीवित अंशों को जितना हो पूजा जावे। संतों के सम्मानों में न कोई कमी आने पावे और ईश्वर के जीवित अंशों को जितना हो पूजा जावे, अरे और नहीं कुछ इनसे बढ़कर, ये तो राष्ट्र खजाने हैं, और नहीं कुछ इनसे बढ़कर, ये तो राष्ट्र खजाने हैं और हिंदुस्तान की इस माटी के ये सच्चे रखवाले हैं। अरे नैतिकता और परंपरा को इनने अपनी सांसें ली है, नैतिकता और परंपरा को जिनने अपने सांसें ली है, पतित हो रही नैतिकता को जिनने आज लगामी दी है, अरे जिनकी त्याग तपस्या से ही सारा हिंदुस्तान बचा है और बाहर उदों की इस दुनिया में बीच में हिंदुस्तान बचा है, अरे संतों के सम्मानों में जिस रोज ठेस लग जाएगी, संतों के सम्मानों पे जिस रोज ठेस लग जाएगी, अरे बारूदी गोले पे बैठी दुनिया भी उड़ जाएगी। संत नगर में जब आते हैं कि संत नगर में जब आते हैं सबको एहसास करा दो, संत नगर में जब आते हैं सबको ऐलान करा दो और दुनिया की जीवित मानवता देखो ऐलान करा दो कि चलते फिरते तीरथ हैं आओ इनके दर्शन कर लो, चलते फिरते तीरथ हैं आओ इनके दर्शन कर लो, इनकी दिव्य देशना सुनकर अपना जीवन पावर कर लो, राम और महावीर के वंशज ए संत दिगंबर धरती पर, राम और महावीर के वंशज ए संत दिगंबर धरती पर, दुनिया के सच्चे महाराजा ए संत दिगंबर धरती पर, ईसु और पैगंबर ये हैं वर्तमान में संत दिगंबर धरती पर, हमें जान से प्यारे हैं संत दिगंबर धरती पर, अरे इन संतों के चरणों में अपना सब कुछ अर्पण कर दो और यदि जरूरत पड़े कभी तो अपनी जान निछावर कर दो, अपनी जान निछावर कर दो। परम मुनि मुनियों का सानिध्य मिला, अरे ये सौभाग्य तुम्हारा है, श्री संघ सानिध्य मिला ये सौभाग्य तुम्हारा है, अरे मोक्ष महल के वरद हंस अरे ये सौभाग्य तुम्हारा है, लाखों गांव नगर भारत में पर सौभाग्य तुम्हारा है और संजय महावीर बस्ती में ये सौभाग्य तुम्हारा है। जब तक ये सानिध्य मिला है अमृत बरसेगा, जब तक ये सानिध्य मिला है अमृत बरसेगा, घर घर ज्ञान दिवाली होगी सब रंग बरसेगा, कितने भटके हुए पथिक सतपथ पर आएंगे और संस्कार के पावन जल से सींचे जाएंगे, अरे आगामी कितने बसंत महकेंगे फूलेंगे और इनकी पावन वाणी से पतझड़ भी महकेंगे। ऐसे ही कवि महावीर के समोचरण चलते थे, ऐसे ही कवि महावीर के समोचरण चलते थे, ऐसे ही कवि महावीर के समोचरण थमते थे, अरे यही कमंडल यही पिच्छी और यही वेश धरते थे, यही कमंडल यही पिच्छी और यही वेश धरते थे, और कभी अतीत में महावीर भी ऐसे ही लगते थे, कभी अतीत में महावीर भी ऐसे ही लगते थे, कभी अतीत में महावीर भी ऐसे ही लगते थे।
तो पूरी महावीर की परंपरा को ही एक कड़ी में गूंथ दिया, और जिस तरह बूंद से समुद्र की कल्पना की जा सकती है, उसी तरह किसी भी त्यागी साधु के बहाने पूरी त्याग की परंपरा को हम देख सकते हैं। ये संदेश उन्होंने अपनी कविता में दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। हमारे बीच उज्जैन से भाई कैलाश तरल भी आ गए हैं, और कैलाश तरल को कई बार सुनने का मुझे मौका मिला है। वे अच्छी कविताएं ही नहीं लिखते, बल्कि कविताओं को बहुत अच्छी तरह से अपने तरन्नुम में गूंथ कर सुनाने की क्षमता भी रखते हैं। उन्होंने घर गृहस्थी के गीत लिखे, देश और राष्ट्र के लिखे, धर्म और समाज के लिखे, और इस तरह अपने एक कवि के रूप में तरह तरह से उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, अपना दायित्व तो निभाया है। ऐसे मित्र कवि उज्जैन से पधारे हुए भाई कैलाश तरल से मैं आग्रह कर रहा हूं कि आज इस धर्म सभा की इस काव्य गोष्ठी में अपनी उपयुक्त रचनाएं सुनाएं और हम सबको धन्य करें। भाई कैलाश तरल।
बोलो संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री क्षमा सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। आदेश हुआ है, सबसे पहले नमोकार मंत्र की रचना से मैं अपनी काव्य पाठ की यात्रा आज की प्रारंभ करना चाहता हूं। नमोकार मंत्र जैन धर्म का मूल मंत्र है। धर्म शास्त्र की दृष्टि से यह विनय का बीज है। मंत्र शास्त्र की दृष्टि से नमोकार मंत्र शोधन बीज है, शरीर और आत्मा मन की शुद्धि करने वाला है, और तंत्र शास्त्र की दृष्टि से यह शांति और पुष्टि को लाने वाला है। ऐसे नमोकार मंत्र की महिमा मंगलाचरण के रूप में मेरी काव्य रचना पर आपके ओर रख रहा हूं।
बन जीवन का एक ही आधार रे, बन जीवन का एक ही आधार रे, नमो कार नमो कार नमो कार रे, बन जीवन का एक ही आधार रे, नमो कार नमो कार नमो कार रे, नमो कार नमो कार नमो कार रे। ये याचनाओं कामनाओं से स्वतंत्र है, ये याचनाओं कामनाओं से स्वतंत्र है, मंत्र तो कहीं है पर ये महामंत्र है, ये याचनाओं कामनाओं से स्वतंत्र है, मंत्र तो कहीं है पर ये महामंत्र है। सुन महिमा इसकी अपरंपार रे, नमो कार नमो कार नमो कार रे, बन जीवन का एक ही आधार रे, नमोकार 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 रे।
नमोकार मंत्र का रचयिता कौन है ये आज तक अज्ञात है। मैंने लिखा है
इसका न आदि है न कोई अंत है, इसका न आदि है न कोई अंत है, करो आराधना इसकी कहे ये संत है, इसका न आदि है न कोई अंत है, करो आराधना इसकी कहे ये संत है। हे जिन वाणी का यही तो सार रे, नमोकार 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 रे, बन जीवन का एक ही आधार रे, नमोकार नमोकार नमोकारूरे,
नमोकार मंत्र में नमो कहते ही, नमो बोलते ही आदमी में विनम्रता आती है। मैंने लिखा
नमो कहते ही नम्रता आएगी, नमो कहते ही नम्रता आएगी, नित ध्याय आत्मा वो मोक्ष जाएगी। नमो कहते ही नम्रता आएगी, नित ध्याय आत्मा वो मोक्ष जाएगी। जपते ही जपते कर भाव पार रे, नमोकार 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 रे।
पंच परमेष्ठी को नमस्कार करता हूं। अंत में अंतिम चरण गीत का,
अरिहंत सिद्ध आचार्य को नमन, अरिहंत सिद्ध आचार्य को नमन, उपाध्याय लोक के सब साधु को नमन। ये पांच पद घट घट मैं उतार रे, नमोकार 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 रे। वन जीवन का एक ही आधार रे, नमोकार 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 रे, नमोकार 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 रे, नमोकार नमोकार रे।
नमोकार मंत्र के इस मंगलाचरण के बाद में मैं गुरु वंदना पढ़ना चाहता हूं। एक रचना आचार्य श्री विद्यासागर जी के चरणों में समर्पित।
जो नामुना की कामना से कोसों दूर है, जो नामुना की कामना से कोसों दूर है, कहीं कहीं ऐसे संत भी जरूर है। जो नामुना की कामना से कोसों दूर है, कहीं कहीं ऐसे संत भी जरूर है। तेरी जिज्ञासाओं की पूर्ति है वे, तेरी जिज्ञासाओं की पूर्ति है वे, त्याग की तो साक्षात मूर्ति है वे। तेरी जिज्ञासाओं की पूर्ति है वे, त्याग की तो साक्षात मूर्ति है वे। मान नहीं उनको नजरा गरूर है, कहीं कहीं ऐसे संत भी जरूर है। जो नामना की कामना से कोसों दूर है, कहीं कहीं ऐसे संत भी जरूर है।
हमारे जीवन में हमारे गुरु का क्या स्थान है?
अंधेरे जीवन में उजाला कर दे, अंधेरे जीवन में उजाला कर दे, जिसके भी सिर पे वो पीछी धर दे। अंधेरे जीवन में उजाला कर दे, जिसके भी सिर पे वो पीछी धर दे। जिन शासन की शोभा के वे कोई नूर है, कहीं कहीं ऐसे संत भी जरूर है। जो नामना की कामना से कोसों दूर है, कहीं कहीं ऐसे संत भी जरूर है, कहीं कहीं ऐसे संत भी जरूर है। एक बारी आया वो बार बार आएगा, चरणों में आके मन शांति पाएगा। एक बारी आया वो बार बार आएगा, चरणों में आके मन शांति पाएगा। करवंद ना तू कौन से नशे में चूर है, कहीं कहीं ऐसे संत भी जरूर है। जो नामना की कामना से कोसों दूर है, कहीं कहीं ऐसे संत भी जरूर है। जो नामना की कामना से कोसो दूर है, कहीं कहीं ऐसे संत भी जरूर है, कहीं कहीं।
बोल एक और सुना।
आदेश हुआ है एक बिल्कुल नई रचना सुनाने का।
हाँ जरूर,
नहीं कर पा रहा हूं। श्रद्धेय डॉक्टर सरोज जी के आशीर्वाद मिलेंगे, महाराज श्री के आशीर्वाद तो बहुत जरूरी है मुझे इस रचना पर। मांस निर्यात के विरोध में एक रचना आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं।
स्वागत।
अरे मांस के खाने वालों, क्या तुमको ये भी भान नहीं, मुर्दे कहां दफन होते हैं, पेट कोई कब्रिस्तान नहीं। अरे अम्मा आप सबके आशीर्वाद चाहूं, आप ताली बजाएंगे तो मुझे लगेगा कि मैंने जो कुछ लिखा है वो सही लिखा है। ये उन्हें सुनाना है जो मांस का उपयोग करते हैं, हो सकता है मेरी आवाज विदेशों में पहुंचे, ऐसे अगर आप ताली बजाएं, आपकी तालियों की आवाज जाएगी तो मेरी कविता पहुंच जाएगी। अरे मांस के खाने वालों, क्या तुमको ये भी भान नहीं, मुर्दे कहां दफन होते हैं, पेट कोई कब्रिस्तान नहीं, ये पेट कोई कब्रिस्तान नहीं, बेजुबान पशुओं की गर्दन पर अब छुरियां नहीं धरो, बेजुबान पशुओं की गर्दन पर अब छुरियां नहीं धरो, जीने का हक यहां है सबको, नीति नियम से जरा डरो, जीने का हक यहां है सबको, नीति नियम से जरा डरो, बेजुबान पशुओं की गर्दन पर अब छुरियां नहीं धरो, जीने का हक यहां है सबको, नीति नियम से जरा डरो, इनकी चित्कार के हर ना धा दे, मिले जनान निशान नहीं, मुर्दे कहां दफन होते हैं, पेट कोई कब्रिस्तान नहीं, ये पेट कोई कब्रिस्तान नहीं। अरे मांस के खाने वालों, क्या तुमको ये भी भान नहीं, मुर्दे कहां दफन होते हैं, पेट कोई कब्रिस्तान नहीं, पेट कोई कब्रिस्तान नहीं। मांस का उपयोग करने वाले विदेशों में एक छंद मैंने लिखा है, आप सबके आशीर्वाद चाहूंगा, सारे सदन के और डॉक्टर साहब आपके भी आशीर्वाद चाहूंगा। एक बात ऐसी लिखी है मैंने कि बाइबल से एक बात लेकर के आया हूं मैं, जिन्होंने बाइबल को थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा उनको मेरे छंद में बहुत आनंद आएगा, आपके आशीर्वाद चाहूंगा। बात देखिए, कथा सुनी होगी तूने,
उनका धर्म ग्रंथ है जो मांस का उपयोग करते हैं, उनका धर्म ग्रंथ बाइबल है और उन्हीं की धर्म ग्रंथ से मैं ये बात उठा के लाया हूं, आपके आशीर्वाद चाहूंगा सारे सदन के। बात सुनिएगा,
कथा सुनी होगी तूने भी, कैसे धरती पर जन्म लिया, कथा सुनी होगी तूने भी, कैसे धरती पर जन्म लिया, मना किया था फल खाने को पर उन्होंने शाकाहार किया, मना किया था फल खाने को पर उन्होंने शाकाहार किया, कथा सुनी होगी तूने भी, कैसे धरती पर जन्म लिया, मना किया था फल खाने से पर उन्होंने शाकाहार किया, इतना कहते क्या उस आदम हल्ला कि तू संतान नहीं मुर्दे कहाँ दफन होते हैं पेट कोई कब्रिस्तान।
तुम्हारे बाप दादा शाकाहार थे, उन्होंने फल खाया था और तुम मांस का उपयोग करते हो, बस यही बात मैं लाया हूं आपके आशीर्वाद चल रहा हूं।
कथा सुनी होगी तूने ही, कथा सुनी होगी तूने भी, कैसे धरती पर जन्म लिया, मना किया था फल खाने से पर उनने शाकाहार किया। इतना कह दे क्या उस आदम हल्ला कि तू संतान नहीं मुर्दे कहाँ दफन होते हैं पेट कोई कब्रिस्तान नहीं पेट कोई कब्रिस्तान नहीं। अरे मांस के खाने वालों क्या तुमको ये भी भान नहीं मुर्दे कहाँ दफन होते हैं पेट कोई कब्रिस्तान नहीं।
अंतिम चरण गीत का
कि धन साथ समुंदर पार से लाए हे कौन सी ऐसी लाचारी,
हमारे
पार से लाए हे कौन सी ऐसी लाचारी, सोने की चिड़िया के भारत को बनना पड़े मांस का व्यापारी। धन सात समंदर पार से लाए हे कौन सी ऐसी लाचारी, सोने की चिड़िया के भारत को बनना पड़े मांस का व्यापारी।
मांस शब्द को देखें मां और अंश, इसलिए मैंने लिखा है।
धन सात समंदर पार से लाए हे कौन सी ऐसी लाचारी, सोने की चिड़िया के भारत को बनना पड़े मांस का व्यापारी। मांस अंश है मां का मत खा, मांस अंश है मां का मत खा, ये कोई मेवा अनुष्ठान नहीं। मांस अंश है मां का मत खा, ये कोई मेवा अनुष्ठान नहीं, मुर्दे कहाँ दफन होते हैं पेट कोई कब्रिस्तान नहीं पेट कोई कब्रिस्तान नहीं। अरे मांस के खाने वालों क्या तुमको ये भी भान नहीं मुर्दे कहाँ दफन होते हैं पेट कोई कब्रिस्तान नहीं पेट कोई
कब्रिस्तान। भाई तरल ने बहुत ही प्यारी कविताएं सस्वर सुनाई हैं, मैं उन्हें बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। तरल ने एकदम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को प्रस्तुत कर दिया। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था हम कहें हमारे मुनि कहें तो लगता है कि इनका तो धर्म ही है, ये तो कहेंगे ही, लेकिन जब बर्नार्ड शॉ ने ये बात कही कि जो लोग जानवरों को खाते हैं उन्हें तो कब्रगाह ही कहा जाना चाहिए, एकदम पूरी कविता में बर्नार्ड शॉ और उनकी तरह सोचने वालों की सारी भावनाएं उन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों में व्यक्त की। एक संदर्भ आया था बाइबल का, बाइबल में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि आप मांस खाओ, उसमें एक स्थान पर आप अधर्म के रूप में संकेत है। मेरी कई पादरियों से बात हुई, उनके यहां ऐसा कोई आदेश नहीं है, न कोई बलियों का है कि काटो और बांटो, ऐसा भी नहीं है किसी आपद्धर्म के रूप में। और इसकी चर्चा तब अधिक हुई थी जब एक बार मदर टेरेसा को अंडरलाइन करते हुए इस बात को उठाया गया था कि उनको क्यों ऐसा शांति का दूत माना जाता है, जबकि उनके धर्म में तो ऐसा लिखा है, लेकिन उनके धर्म में ऐसा कोई प्रोत्साहन नहीं है। बाबूलाल जी पाटोगी हमारे इंदौर में हमारे जैन समाज के सबसे बड़े मैदानी नेता हैं, सोचते हैं, विचारते हैं और समाज को दिशा देते हैं, हम उनका अनुगमन करते हैं। एक बार उनसे मेरी बात हो रही थी कि पाटोगी जी रात्रि काल का भोजन छुड़वाने के लिए वगैरह वगैरह बहुत सारी बात होती रही। बोले सरोज कुमार, तुम रात्रि भोजन की बात कर रहे हो, अपन दुनिया भर को कितना उपदेश देते हैं, मेरी तो प्रभु जी से यही प्रार्थना है कि जैन युवक दो बातें छोड़ दे, एक अगर करता हो तो मदिरापान और अगर करता हो तो मांसाहार। हम जैनियों को दुनिया भर को मांसाहार मदिरापान न करने का संदेश देने के पहले अपने समाज में अगर कहीं विकृति आ रही है तो उसको बहुत गंभीरता से लेना जरूरी है, नहीं तो हमारे को ये जो हक मिला है ऐतिहासिक हक कि हमारा आचरण धर्म के अनुसार क्या है और हम दुनिया को क्या संदेश दे रहे हैं, हम इस अधिकार से वंचित हो जाएंगे अगर हमारा ही दामन कलंकित होगा, हमारी ही चादर मैली होगी। एक बात आई थी तो मुझे लगा महाराज जी ये बात कही थी पाटोदी जी ने कि ऐसा न हो कि हम पूरे संसार को संदेश दे रहे हैं और अपनी ओर से हम आंखें मीचे हैं, अनदेखी कर रहे हैं और बहुत जरूरी है इस ओर ध्यान देना। मित्रों, मैं इस कविता के बाद, भाई तरण की कविता के बाद, राकेश राकेंदु जो भोपाल से पधारे हैं, सॉरी जबलपुर से पधारे हैं, वो जब आ रहे थे भोपाल से तो मुझे लगा वही होंगे, आज भी जो जहां से आता है बहुत अच्छे नए कवि हैं। मुझे एक बार मैंने उन्हें सुनने का मौका भी प्राप्त किया था अजमेर में, अजमेर में आप भी थे जब सुधा सागर जी के सानिध्य में कवि गोष्ठी हुई थी। भाई राकेंद्र जी से आग्रह है कि वे रचना पाठ करके हम सबको कुछ अच्छी बातें सुनने का सुअवसर प्रदान करें।
गुना मुंगावली शहर के जिन बिंबों को नमन करता हूं, चार पंक्तियां गुरुदेव के चरणों में, अभी अनावरण हुआ, चित्रों को देख के कुछ शब्द याद आ गए कि इनको खुदा कहूं या उनको खुदा कहूं, हमने गुरुवर को सभी तरफ पाया है, हर गुरु के चरणों में उनकी आकृति हमको दिखाई देती है कि इनको खुदा कहूं या उनको खुदा कहूं, दोनों की शक्लें एक सी किसको खुदा कहूं, दोनों की शक्लें एक सी किसको खुदा कहूं। चार पंक्तियां गुरु के आदेश से, गुरु के आशीर्वाद से ही हम लोग लिखा करते हैं। कुछ पंक्तियां गुरुदेव के चरणों में कुंडलपुर तक पहुंचाने की कृपा करूंगा। कि भावनाओं के आकाश बन के आए हो, भावनाओं के आकाश बन के आए हो, आप हम सबके विश्वास बन के आए हो, आप हम सबके विश्वास बन के आए हो, अब तो मन मंदिर के देव हो तुम ही गुरुवर, अब तो मन मंदिर के देव हो तुम ही गुरुवर, और इसी क्षेत्र के अति सुंदर अतिशय मुनिवर, यूं लगा जैसे महावीर बन के आए हो, यूं लगा जैसे महावीर बन के आए हो, हर हृदय आपका करता यहाँ अभिनंदन है, हर हृदय आपका करता यहाँ अभिनंदन है, विद्या सागर जी तुमको शत शत वंदन है, विद्या सागर जी तुमको शत शत वंदन है। चार पंक्तियां गुरुदेव के चरणों में कि आपने शीश पर जब हाथ रख दिया गुरुवर, आपने शिशु पर जब हाथ रख दिया गुरुवर, यू लगा भू को अंबर हो दे दिया मुनिवर, यू लगा भू को अंबर हो दे दिया मुनिवर। हम तो कई जन्मों से बुझे चराग थे ऋषिवर, हम तो कई जन्मों से बुझे चराग थे गुरुवर, आपने आरती बना दिया हमको गुरुवर, आपने आरती बना दिया हमको गुरुवर। तुम हो शीतल इतने जैसे कि चंदन है, क्षमा सागर जी तुमको शत शत वंदन है, क्षमा सागर जी तुमको शत शत वंदन। और एलक द्वय के चरणों में नमन करते हुए, हमारा सौभाग्य कि गुरु सानिध्य मिला। ये श्रमण संग के महासंत, ये श्रमण संग के महासंत, ये जिन आगम के नव वसंत, ये जिन आगम के नव वसंत, ये ज्ञान दिवाकर दिग दिगंत, ये कुंद कुंद से अमर संत, ये मोक्ष मार्ग के पथिक हमें, ये मोक्ष मार्ग के पथिक हमें सतपथ दिखलाने आए हैं, ये मोक्ष मार्ग के पथिक हमें सतपथ दिखलाने आए हैं। ऐसे गुरुवर के चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं। ये श्रमण संग के महासंत, ये जिन आगम के नव वसंत, ये संत न होते धरती पर, ये संत न होते धरती पर, सागर भी पथ भूला होता। आए दिन भूकंप आते हैं, तूफान आते हैं, कि ये संत न होते धरती पर, सागर भी पथ भूला होता, ये महल अटारी ना होते बस मिट्टी का टीला होता, ये संत न होते धरती पर, सागर भी पथ भूला होता, ये महल अटारी ना होते बस मिट्टी का टीला होता। गुरु आए आर मेदिनी को फिर एक नया वरदान मिला, गुरु आए आर मेदिनी को फिर एक नया वरदान मिला, जो सूख रहे थे प्राण उन्हें फिर से नव जीवन दान मिला, जो सूख रहे थे प्राण उन्हें फिर से नव जीवन दान मिला। खुद जियो और जीने धोखा, खुद जियो और जीने धोखा, ये पाठ पढ़ाने आए हैं। ऐसे गुरुवर के चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं। ये श्रमण संग के महासंत, ये जिन आगम के नव वसंत। और गुरुदेव का जन्म विद्यासागर जी का शरद पूर्णिमा को हुआ था, कि वह शरद पूर्णिमा क्या प्यारा दिन, वह शरद पूर्णिमा का प्यारा दिन जग में न्यारा आया था, वह शरद पूर्णिमा का प्यारा दिन जग में न्यारा आया था, युग को निर्मल कर देने को अनुपम उजियारा लाया था, वह शरद पूर्णिमा का प्यारा दिन जग में न्यारा आया था, युग को निर्मल कर देने को अनुपम उजियारा लाया था। गुरु चरण मिले यूं लगा हमें जैसे कि चारों धाम मिले, गुरु चरण मिले यूं लगा हमें जैसे कि चारों धाम मिले, तुलसी को जैसे राम और मीरा को जो घनश्याम मिले, तुलसी को जैसे राम और मीरा को जो घनश्याम मिले। ये वेद पुराण कुरानों का, ये वेद पुराण कुरानों का फिर सा बताने आए हैं। ऐसे गुरुवर के चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं। ये श्रमण संग के महासंत, ये जिन आगम के नव वसंत, ये ज्ञान दिवाकर दिग दिगंत, ये कुंद कुंद से अमर संत, ये मोक्ष मार्ग के पथिक हमें सतपथ दिखलाने आए हैं। ऐसे गुरुवर के चरणों में हम शीश झुकाने आए। जब गुरु सानिध्य मिला तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है, कि आओ गुरुवर की वाणी संजो लें जरा, आओ गुरुवर की वाणी संजो लें जरा, क्या पता फिर ये प्रवचन मिले ना मिले, आओ गुरुवर को मन में बसा लें जरा, क्या पता आओ गुरुवर को मन में बसा लें जरा, क्या पता फिर ये दर्शन मिले ना मिले। आओ गुरुवर की वाणी संजो लें जरा, तन तो हमने बहुत ही सजाया मगर, ये शरीर बांसुरी की तरह है कि तन तो हमने बहुत ही सजाया मगर, हम तो चेतन की पूजा ही कर ना सके। तन तो हमने बहुत ही सजाया मगर, हम तो चेतन की पूजा ही कर ना सके। वासुरी तो मिली, श्वास भी है मिली, इसमें भक्ति का स्वर ही पिरो ना सके, इसमें भक्ति का स्वर ही पिरो ना सके। साधु और आज साधन है दोनों जुड़े, साधु और आज साधन है दोनों जुड़े, क्या पता फिर ये संगम मिले ना मिले। आओ गुरुवर की वाणी संजो लें जरा, क्या पता फिर ये प्रवचन मिले ना मिले। आओ गुरुवर को मन में बसा लें जरा, इनको पाने की तुम कल्पना तो करो, इनको पाने की तुम कल्पना तो करो। तुम हो पतझड़ ये सावन की बरसात है, इनको पाने की तुम कल्पना तो करो। तुम हो पतझड़ ये सावन की बरसात है, ये तो पूनम का उगता हुआ चांद है, ये तो पूनम का उगता हुआ चांद है। संग इनके अमा संग इनके उजालों की बारात है, संग इनके उजालों की बारात है। चांद है सामने बाट ले चांदनी, चांद है सामने बाट ले चांदनी, क्या पता फिर ये पूनम मिले ना मिले। आओ गुरुवर की वाणी संजो ले जरा, क्या पता फिर ये प्रवचन मिले ना मिले। आओ गुरुवर को मन में बसा लें जरा, क्या पता फिर ये नर्तन मिले ना मिले। बोलो गुरुवर विद्यासागर महाराज की।
वाह बहुत बढ़िया भाई, क्या बात, वाह महाराज जी। अब
अभी जो सबको हम सबको सुनाने का आदेश दे रहे थे, हम सब अब उनसे सुनाने का निवेदन करेंगे। सरोज जी, समूचे हिंदुस्तान के साहित्यकारों में सर्वोपरि साहित्यकार हैं। मैंने अपने जीवन का दूसरा कवि सम्मेलन सन 1982 में उनके सानिध्य में रायपुर में पढ़ा था। तब से आज तक कई बार उनकी रचनाएं पढ़ी, कई बार उनकी रचनाएं सुनी है। एक अलग ही विधा है उनकी अपनी रचनाओं की, बड़े अच्छे व्यंग गुदगुदी देने वाले और एक सत्य को उजागर करने वाले। मैं उनकी तारीफ में कहने की हिम्मत नहीं रखता। महाराज श्री के सानिध्य में आदरणीय सरोज जी को मैं क्या बढ़ा सकता हूं, पर आप सबकी तालियां बेजोड़ तालियां उन्हें मिल सकती है। आदरणीय सरोज जी,
नरेंद्र ने जो कहा है इसमें अतिशयोक्ति बहुत ज्यादा है। ऊपर तो मैं है, मैं नीचा हो जाऊं, मैं कुछ कह रहे हैं इसको। दस मिनट, दस मिनट एक समय सीमा है और छोटी छोटी कुछ कविताएं मैं गा नहीं पाता हूं। मैंने कई बार अकेले में कोशिश की बस शर्मिंदा हो गया मैं कि ये तो नहीं चलेगा, इसलिए मैंने गाना फिर मंच पर कभी कोशिश ही नहीं की। ऐसे ही जैसे बातचीत करते हैं, पहली ये कविता है महाराज जी को इंदौर में सुनाई थी, उसमें बात ये है, ये कही गई है कि हम लोग जो बहुत हाई फाई जिंदगी जीते हैं और उससे बहुत असुरक्षित हो जाते हैं, सामान्य जीवन जिए तो विपत्ति नहीं आती, बहुत दिखावटी जीवन जीते हैं तो ना आने वाली विपत्ति भी आ जाती है। कविता है छोटी सी, घर में कुत्ते न घुस सकें इसलिए मेरे पड़ोसी ने एक आदमी रख छोड़ा, घर में कुत्ते न घुस सकें इसलिए मेरे पड़ोसी ने एक आदमी रख छोड़ा, घर में आदमी न घुस सकें इसलिए दूसरे ने अपने दरवाजे पर एक कुत्ता रख छोड़ा, घर में कुत्ते न घुस सकें इसलिए मेरे पड़ोसी ने एक आदमी रख छोड़ा, और घर में आदमी न घुस सकें इसलिए दूसरे ने एक कुत्ता रख छोड़ा, मैं न आदमी रख पाया न कुत्ता, मैं न आदमी रख पाया न कुत्ता, फिर भी मेरे घर में कोई नहीं घुसा, मैं आदमी रख पाया न कुत्ता, मैं न आदमी रख पाया न कुत्ता, फिर भी मेरे घर में कोई नहीं घुसा। सोचता हूं घुसने वालों ने सोचा होगा कि ऐसे के घर में भी क्या घुसना, घुसने वालों ने सोचा होगा ऐसे के घर में भी क्या घुसना जिसके दरवाजे पर न आदमी है न कुत्ता। महाराज जी अभी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी को हमारे राज्यपाल भाई महावीर जी ने राजभवन में एक काव्य संध्या के लिए बुलाया था हम लोगों को, चार हिंदी के कवियों को बुलाया था, चार उर्दू के शायरों को बुलाया था, बशीर बद्र थे, अशोक चक्रधर थे, मुझे भी मौका मिला था। सामने भाई महावीर जी बैठे हैं, उनकी पत्नी कृष्णा देवी जी बैठी हैं। मैंने उनसे कुछ प्रश्न करते हुए एक कविता वहां पढ़ी थी, महामहिम, यहां से शुरू की, महामहिम कितनी PWDO में कितनी योजनाओं का भाग दें, महामहिम कितनी PWDO में कितनी योजनाओं का भाग दें कि साहबों के बंगलों के बाद एक टपकती छत नसीब हो सके गरीब को, महामहिम कितनी PWDO में कितनी योजनाओं का भाग दें कि साहबों के बंगलों के बाद एक टपकती छत नसीब हो सके गरीब को जिसमें वो संभाल कर रख सके अपने सलीब को। आज अपनी अपना सलीब भी बिना पानी के सुरक्षित रखने की जगह नहीं है, अपना दुर्भाग्य भी आप ठीक से नहीं संभाल सकते। महामहिम कितने विश्वविद्यालयों में कितने प्रोफेसरों का गुणा करें कि तोते ठीक ठीक दूध रोटी चित्रकोटी गायें और भैंसें अकल से छोटी हो जाएं, महामहिम कितने विश्वविद्यालयों में कितने प्रोफेसरों का गुणा करें कि तोते ठीक ठीक चित्रकोटी दूध रोटी गायें और भैंसें अकल से छोटी हो जाएं। वहां क्या था कि शैल चतुर्वेदी बैठे थे और अगली चार लाइन सुनाते समय मैं किसी न किसी को उससे समर्पित करता था, तो जिस तरह मैंने वहां राजभवन में ये पंक्तियां शैल जी को समर्पित की थी, यहां मैं कैलाश तरल को समर्पित कर रहा हूं। महामहिम कितने टन सोने में कितने वित्त मंत्रियों का गुणा करें, महामहिम कितने टन सोने में कितने वित्त मंत्रियों का गुणा करें कि सस्ती हो जाए तुअर की दाल, महामहिम कितने टन सोने में कितने वित्त मंत्रियों का गुणा करें
कि सस्ती हो जाए तुअर की दाल और कैलाश तरल जैसे हो जाएं जनता के गाल, छे भरे भरे गाल हो जाए। महामहिम अंतिम महामहिम कितनी अजानों को जो मस्जिद में जो मुसलमानों की प्रार्थना है, महामहिम कितनी अजानों को कितनी आरतियों के निकट लाएं कि टोटल कर्फ्यू में नहीं आए। महामहिम कितनी आरतियों को कितनी अजानों को कितनी आरतियों के पास लाएं कि टोटल कर्फ्यू में नहीं आए और नदियों में खून नहीं सिर्फ पानी ही बह पाए, सिर्फ पानी ही बह पाए। ये कविता, ये जैन धर्म कहता है कि कोई किसी को तार नहीं सकता, अपने ही कर्म अपनी ही साधना, जो अपन ने किया वही अपन पाएंगे। ना भगवान महावीर किसी को तार सकते हैं, न विद्यासागर जी न क्षमा सागर जी। ये दीप की तरह प्रज्वलित होकर, दीप की तरह हमको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलना हमको पड़ेगा। वो संकेत दे सकते हैं, कति तो हमारा होगा। ऐसा नहीं कि तू मेरी शरण में आ जाओ फिर सब मैं तेरा निपट दूंगा, ऐसा नहीं है कि तू आ जा मेरी शरण में और सब तेरा मैं देख लूंगा, ऐसा हमारे जैन धर्म में नहीं है। हर एक को, चाहे महावीर हो तो और कोई सामान्य शावक हो, वह सबको अपना अपना कर्म करना होगा, तपस्या करनी होगी और उसके अनुसार जो भी उसका भाग्य बनेगा सो बनेगा। इसमें कहा गया है पतंग के माध्यम से कि सबको अपनी पतंग खुद उड़ाना पड़ेगी। ये प्रतीक है इसमें कि हम कहते हैं ना कि उसका जेक नहीं मिला, उसका तो वो मिल गया, उसने उसको वो कर दिया, उसका तो मंत्री था उसने उसको कर दिया। ये नहीं चलता जैन धर्म में। तुम्हें कोई उड़ंची दे सकता है, पतंग उड़ाई हो आपने भी, अब तो आप बूढ़े हो गए, उड़ाई थी कि नहीं? पतंग तो अभी भी जवान है, उस समय उड़ाई होगी, तो उड़ंची देना पड़ती कई बार। अभी उड़ंची क्या है, थोड़ा सा सहारा है, एक सहारा है, जैसे कि एक दीप स्तंभ से हमको दिख जाए वैसा मान लीजिए, बस सहारा मिल सकता है। तुमको कोई उड़ंची दे सकता है, आकाश नहीं। तुमको कोई उड़ंची दे सकता है, आकाश नहीं। अपनी पतंग तो तुम्हें ही उड़ाना पड़ेगी, उसकी कांप, उसके ठुड्डे, उसका मंजा, उसकी ठुमकी, उसका हुचका, सबका अपना व्याकरण है, वो आपको ही होना चाहिए। आप दूसरे के हुचके से अपनी पतंग तो नहीं उड़ा सकते। उसकी कांप, वो जो बांस की, उसकी कांप, उसके ठुड्डे, उसका मंजा, उसकी ठुमकी, उसका हुचका, सबका अपना व्याकरण है। उड़ंची वाली शुरुआती उड़ान पतंगबाजी नहीं है। पतंग के दांव, उसके पेंच, उसकी ढील, उसकी खेंच, सबका अपना गणित है। उड़ंची ऊंचाइयों का आश्वासन नहीं है। अगर कोई उड़ंची मिल गई तो समझ लो कि तुम्हारी पतंग उड़ ही जाएगी, कि क्षमा सागर जी के मंडप में आ गए इसलिए अपन तर ही जाएंगे, तो नहीं भैया, यहां उड़ंची मिली है, अब पतंग उड़ाओ जीवन भर। ऐसा नहीं कि बस उड़ंची मिल गई तो अपन ने सोचा कि आसमान मिल गया, ये तो एक सहारा मिला है। देने वाला यहां बहुत कहा गया कि यहां बहुत व्यवसायी समाज के लोग हैं, तो ये कविता उनसे भी मिलती जुलती है कि देने वाला दे रहा। मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो धोखा देते हैं, उनको समझ में जल्दी आएगी, ये मैं कहना चाहता हूं, समझ में जल्दी आएगी, कि नौकरी पेशा कोई समझ में नहीं आती है, आप उससे अलग किस्म की समझ रखते हैं। देने वाला दे रहा है धोखा, इस अदा से कि जो दिया जा रहा है वो धोखा नहीं है। देने वाला दिए जा रहा है धोखा, इस अदा से कि जो दिया जा रहा है वो धोखा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि खाने वाला अनजान हो, वो भी खाया जा रहा है धोखा, इस अंदाज से कि वह जो खा रहा है वो धोखा नहीं है। धोखा धोखा होने के बावजूद फल रहा है और दोनों वजह में है, दोनों का काम चल रहा है। एक अलग किस्म की, मां के कहे अनुसार मंदिर में मैंने चावल चढ़ाए, वे पुजारी की हंडी में चले गए, पिता के कहने पर नारियल चढ़ाए, वे बिकने को मंडी में चले गए, मां के कहे अनुसार मैंने चावल चढ़ाए, वे पुजारी की हंडी में चले गए, पिता के कहने पर नारियल चढ़ाए, वे बिकने को मंडी में चले गए, प्रभु मैं चरणों में ऐसा क्या चढ़ाऊं जो ऐसा चढ़े कि कभी उतर ही न पाए, प्रभु मैं चरणों में ऐसा क्या चढ़ाऊं जो ऐसा चढ़े कि कभी उतर ही न पाए, जिसके चढ़ जाने से मैं ही खुद चढ़ जाऊं कुछ ऊपर। चावल पवित्र होते हैं, नारियल मंगल मंडित हैं, निश्चित ही निर्माल्य निर्मल होना चाहिए, प्रभु क्या मैं स्वयं को चढ़ा पाऊंगा कभी, निर्माल के सदृश बना पाऊंगा अपने को चढ़ा देने योग्य निर्मल। एक आध और छोटी सी, फिर दूसरे दौर में। एक कविता जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपने भी महाराष्ट्र जी को ठंड के दिनों में भी देखा होगा, सूट पहन अपने आप को सूट पहना करके देखा होगा, ओवरकोट में भी अपने आप को रख करके देखा होगा, अपन पुलोवर पहने होंगे और महाराज को दिगंबर वेश में देखा होगा। वैसे ही एक चिड़िया ने एक बार देखा, ठंड के दिन थे, दिगंबर साधु को देख चिड़िया को दया आई, बोली बाबा सामने की छत पर कई पाजामे सूख रहे हैं, बोली बाबा सामने की छत पर कई पाजामे सूख रहे हैं, आप कहें तो आपके लिए एक ला दूं, ला दे, साधु ने कहा अगर मेरे नाप का मिल जाए, ला दे, साधु ने कहा अगर मेरे नाप का मिल जाए। चिड़िया अभी तक लौटी नहीं है, सूने घर में कपड़े उतार कर मैं मुनि बनने की प्रैक्टिस करने लगा, सूने घर में कपड़े उतार कर मैं मुनि बनने की प्रैक्टिस करने लगा, बाल तो नहीं नोच पाया, हाथों की अंजुरी में खाने की कोशिश की, ध्यान की कोशिश में था कि एक चिड़िया कमरे में घुस आई, यहां वहां कुछ उड़ी, कुछ टकराई और फिर बाहर फुर्र से उड़ गई, शायद वो बताने आई थी कि उड़ने की प्रैक्टिस कमरे में नहीं हो सकती। एक और अंतिम, लोभ रहता है मंच मिल जाए तो। देखिए इसमें कहा यह गया है, मैं भी हूं जहां भी मुनिश्री का चतुर्मास होता है वहां आ जाता हूं, आप लोग भी जो भी मुनिवर यहां आते होंगे उनके लिए ये सुंदर मंडप बनाते हैं, उनके लिए चौके लगाते हैं, उनके लिए माइक लगाते हैं, सब करते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये सब